दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के एज डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर रॉबर्ट फिट्जगेराल्ड लोगों से वृद्ध लोगों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने और उम्रवाद यानी एजिज्म के साथ लिंगवाद और नस्लवाद के समान व्यवहार करने का आह्वान कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के शोध से पता चलता है कि नकारात्मक स्टीरियोटाइप्स बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार में योगदान कर सकते हैं और तो और एजड पॉपुलेशन को कार्यबल से बाहर रख उनके जीवन काल को भी कम कर सकते हैं। एडवोकेट्स का कहना है कि गहरी धारणाओं और मूल्यों को चुनौती देने के लिए एक अंतर पीढ़ी का दृष्टिकोण यानी कि इंटरजेनरेशनल अप्रोच की आवश्यकता है। आंकड़ों की माने तो आने वाले 20 सालों के भीतर ऑस्ट्रेलिया की 65 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध जनसंख्या लगभग 90 लाख हो जाएगी, जो कि आज की तुलना में लगभग दोगुनी है। पहले की तुलना में अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोग वृद्धावस्था में स्वस्थ, धनवान और लंबी उम्र तक प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो कि अब भी वित्तीय और आवास संबंधित तनाव से पीड़ित हैं। सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध समुदायों के लोगों के लिए ये समस्या और गंभीर रूप से उभर कर सामने आ रही है। इस मुद्दे को गहराई से समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान, तो आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। प्रेम जी, सबसे पहले तो आपका SBS हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
माय प्लेजर।
सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमें अपनी संस्था के बारे में बताएं और हमारे श्रोताओं को अपना परिचय भी दें।
मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नॉर्दर्न रीजन इंडियन सीनियर्स एसोसिएशन ऑफ विक्टोरिया। इसका एक्रोनिम है NRISA। उसको लोग अक्सर नरीसा कहते हैं। हमारा जो मिशन है टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ सीनियर इंडियन डायस्पोरा सेटल्ड इन ग्रेटर मेलबर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज फॉर मेंबर्स टू मेंटेन हेल्दी बॉडी माइंड एंड स्पिरिट एंड कीप दीज एक्टिविटीज ओपन टू ऑल। देखिए, इसको मैं विस्तार में अगर थोड़ा सा विस्तार में बताऊं, हमारी संस्था इसलिए बनी क्योंकि हमने देखा कि जितने नए माइग्रेंट्स आते हैं वो ज्यादातर रिटायर्ड लोग हैं। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्किंग पॉपुलेशन। जो कई यहां पर जितने इंडियन बच्चे हैं जो आकर के यहां पढ़े लिखे और अब अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, इन लोगों के माता पिता रिटायरमेंट के बाद आते हैं
जी।
और ऐसे बहुत सारे लोग हैं और यहां पर आकर के सडनली वो अपने नॉर्मल वातावरण से अलग हो अपने आप को महसूस करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर लोनलीनेस, आइसोलेशन, डिप्रेशन, इस तरह की समस्याएं जागृत हो जाती हैं। इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको इससे निकाला जाए, इस अवस्था से, और उनके लिए हमने बहुत सारे एक्टिविटीज वगैरह प्रोग्राम्स प्लान करके रखा हुआ है। और जैसे जैसे हमारी बात बढ़ेगी मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा कि हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस पे हम लोग किस तरह से वेलकम करते हैं। और अभी मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारा पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही अच्छा है और हम सबको बहुत खुशी मिलती है और बहुत आनंद आता है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं।
तो प्रेम जी, हम एक्टिविटीज के बारे में तो विस्तार से बात करेंगे ही, लेकिन क्योंकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो जानना चाहूंगी कि भारतीय समुदाय में जो ओल्डर पॉपुलेशन है उन्हें किस तरह की दिक्कतों या चैलेंजेस का सामना यहां ऑस्ट्रेलिया में आकर करना पड़ता है।
सबसे पहले मैं कहूंगा ये सिर्फ भारतीय लोगों के लिए नहीं है, ये सारे ओल्डर पॉपुलेशन के लिए है। जैसा मैंने बताया ना कि सबके सब अपने बच्चों के पास रह रहे हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो अपने घरों में रह रहे हैं। तो बच्चों के साथ अगर अपना घर भी है तो वो बच्चों ने ही इंतजाम करके दिया हुआ है। कई बहुत प्यारे बच्चे हैं जो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते हैं, उनको अलग घर दिया है ताकि वो अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सके। लेकिन कुछ भी करो, लोनलीनेस तो है ही, और आपको पता ही होगा कि हमारे इंडियन पॉपुलेशन में खास करके जितने हमारे मेल्स जो हैं ओल्डर पॉपुलेशन के और काफी हद तक विमेन भी, इन लोगों का सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन अपने हिंदुस्तान में, इंडिया में टोटली लिंक टू द जॉब था। तो जब तक ये लोग नौकरी करते थे या काम करते थे, काम धंधा करते थे, तब तक इनका सारा सोशल सर्कल और जो आप वित्त की बात कह रही हैं, फाइनेंशियल सर्कल, सारा कुछ वो सेंटर्ड अराउंड वर्क। दोस्त यार भी उसी से मिलते थे, आना जाना भी उन्हीं के साथ होता था। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैमिलीज नहीं थी, फैमिलीज जरूर थी, लेकिन उसके अलावा भी तो लोगों का संपर्क होता है। अब यहां पर सबसे बड़ी समस्या ये इन लोगों को मिल रही है कि काम धाम तो कुछ मिलता नहीं है, कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है इस देश में इस वक्त। औरतों के लिए तो बहुत कुछ इन्होंने किया है कि उनके स्टेटस को अपलिफ्ट किया जाए। आप देखिएगा कि यहां सरकार में, सरकारी नौकरी में, सरकारी डिपार्टमेंट्स में हर वक्त फीमेल्स को अपलिफ्ट करने की बहुत पॉलिसीज बन रही हैं, लेकिन हम वृद्ध लोगों को के बारे में कोई नहीं सोचता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब मांगते हैं, लेकिन देखिए जो मैंने देखा है यहां पर, जो अपने भारतीय लोग आते हैं उनमें से ज्यादातर लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं और काफी क्वालिफाइड होते हैं, और वो जब रिटायर होकर के आते हैं तो उनको ये सब छोटे मोटे वॉलंटियर काम में मन नहीं लगता है। और मैं यहां की भी संस्थाओं में जाकर के देख चुका हूं, इस बात पर काफी चर्चा आजकल चल रही है, यहां पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि यहां पर मेहनत वाली काम की है और उसके बाद अब रिटायर होकर के उनको नौकरी करने की कोई चाहत नहीं है। वे सब चाहते हैं कि भाई सरकार से पैसे मिले, हम तो जाएं, हम कैसीनो जाएं और हम पार्टी करें और हम घूमें फिरें, खाएं पिएं, इसमें अपनी बाकी जिंदगी बिताएं। लेकिन भारतीय लोगों के साथ मैं देखता हूं कि दैट इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल। और यहां आकर के टू सडनली फाइंड कि न कोई सर्कल है, न सोशल सर्कल है, न कुछ है, उनको बहुत एक तरह से कहिए सदमा लगता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कोई को डायरेक्टर बना दिया जाए और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाए, लेकिन सम मीनिंगफुल वर्क शुड बी प्रोवाइडेड। ऐसी भी बात नहीं है कि हम लोग अभी भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो कर ही सकते हैं। कि आपने तो वो पिक्चर देखी होगी ना, बागवान, उसमें जो अमिताभ बच्चन का रोल है,
हाँ जी,
वो बैंक से तो काफी बड़े ओहदे पर रिटायर किया था ना, लेकिन देखिए उसको उस छोटी सी वो कॉफी शॉप में अकाउंटिंग का जो थोड़ा सा भी काम मिल गया उससे वो बड़ा खुश रहता था। इट गेव हिम अ डाइवर्शन। तो इस तरह से यहाँ पर भी अगर हम इस तरह की कुछ चीजें कर सके, सरकार की ओर से अगर इस पर कुछ इनपुट हो, कुछ ध्यान हो, तो कितना बढ़िया रहेगा।
जी बिल्कुल। प्रेम जी, एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी तक इस क्षेत्र में सरकार की ओर से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया है, क्योंकि ये जो समस्या है ये आज की समस्या तो है नहीं, और जैसा कि आपने बताया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और अन्य लोगों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया होगा पहले भी, तो अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया है?
इसका जवाब तो आप उन्हीं से पूछिए, सरकार से पूछिए। मैं कहां से बता सकता हूं। मेरा काम है कोशिश करना, हम कोशिश करते चले जा रहे हैं और सरकार अपना काम कर रही है।
जी चलिए, तो आपके काम के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। जानना चाहूंगी कि आपकी संस्था में किस तरह की एक्टिविटीज आप कराते हैं जिसके माध्यम से ये एक कम्युनिटी फॉर्म हो रही है?
तो हमारे कई एक्टिविटीज हैं। सबसे पहले तो जो सबको ही को पता है कि हम महीने में एक बार जरूर मिलते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम 8 बार हम लोग इन हाउस मीट करें और 4 बार हम लोग ट्रिप्स पर जाएं, एक्सकर्शंस पर।
अरे वाह।
इसको जो मंथली मीटिंग जो इन हाउस करते हैं हम लोग, ये हमारा बेंट स्ट्रीट में है, बेंट स्ट्रीट नॉर्थकट में है, वहां पर हम करते हैं। सबसे जरूरी तो है मीटिंग एंड ग्रीटिंग, मतलब अपने तरफ के लोगों से मिलना। जो नए लोग आते हैं उनको कुछ फेमिलियर फेसेस कभी मिलते हैं, नहीं तो फेमिलियरिटी कर लेते हैं, मतलब दोस्ती करते हैं, जान पहचान करते हैं और धीरे धीरे कई इंस्टेंसेस में दोस्ती में बदल जाता है ये। तो ये अच्छी चीज है क्योंकि कहीं भी नए जगह में आप जाओ तो कुछ लोग अगर किसी से दोस्ती हो जाए तो अच्छी होती है ना, अच्छी बात होती है। उसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई एक हेल्थ रिलेटेड टॉक हो, या तो हेल्थ रिलेटेड हो नहीं तो गवर्नमेंट सर्विसेज का परिचय करवाएं कि देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इन सब का हम लोग इत्मीनान से फायदा उठा सकते हैं। कईयों को तो ये भी पता नहीं है कि मेडिकेयर के क्या रूल्स हैं, या सिर्फ सब कोई को बहुत जो ज्यादा सब कोई को पता है वो ये है कि पेंशन नहीं मिल सकता है 10 साल तक, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनके बारे में कि लोगों को ज्ञान नहीं है। दूसरी चीज होती है इंटरमिंगलिंग, मतलब अपना देशी मतलब बॉलीवुड थीम पर सिंगिंग, डांसिंग, नाच गाने से तो सब कोई का दिल हल्का होता ही है, पार्टिसिपेट भी करने के लिए हम लोग इनकरेज करते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि सब चीज के बाद लंच
जी।
भाई बिना खाए पिए हम हिंदुस्तानियों को कहां सुकून प्राप्त होगा। तो ये हम एक वेजिटेरियन लंच हमेशा रखते हैं, तो ये तो अपना इन हाउस होता है
जी।
और जब हम एक्सकर्शंस पर जाते हैं तो या तो हम बस ट्रिप्स करते हैं, तो बस में कैपेसिटी के हिसाब से करीब 50 लोगों को लेकर के कहीं कहीं दूर दूर पर, मतलब बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, मतलब 1.5-2 घंटे या 2.5 घंटे मैक्सिमम, इतनी दूरी पर जाकर के वहां पर थोड़ा पिकनिक वगैरह किया, या अगर वो हिस्टोरिकल प्लेस है तो वहां के कुछ थोड़े बहुत दर्शन किए, देखा कि किस लिए फेमस है ये जगह, या क्या यहाँ का हिस्ट्री क्या है। तो इस तरह से थोड़ा सा कल्चरल ज्ञान भी पता हो जाता है, उपलब्ध होता है। ट्रेन से भी अभी देखिए, अभी हम लोग इसी हफ्ते जाने वाले हैं ट्रेन से ट्रायलगन, 2.5 घंटे का लगभग ट्रेन जर्नी है ईच वे, तो वहां पर तो सिर्फ पिकनिक टाइप का ही होगा, वहां लंच खाएंगे और जरा मरा इधर उधर किसी को घूमने का मन हुआ तो करेंगे। लेकिन देखिए अब जो हम लोग सारे जब जरा थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, और इस शब्द को मैं बड़ा लूसली यूज कर रहा हूं क्योंकि कई लोगों को ऑफेंसिव भी लगता है कि मुझे बुढ़ा क्यों कह रहे हो। अरे भाई मैं आपको बुढ़ा नहीं कह रहा हूं, मैं खुद बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन इससे तो हम भाग नहीं सकते हैं ना कि भाई अब बुढ़ापा तो आ ही रही है, अब इसको जवानी तो नहीं कह सकते हैं। तो खैर, हालांकि मेंटली मैं आपको जरूर बताऊं कि हम सबके सब जवान हैं
बिल्कुल,
लेकिन अब शरीर और मन दोनों साथ में तालमेल रख करके अक्सर नहीं चलते, उसके लिए क्या किया जाए। तो खैर हम लोग जा रहे हैं इस ट्रिप पर, इसमें मेन पर्पस है कि कम से कम 2-2.5 घंटे जो अपने ट्रेन में साथ साथ बीतेगा उसमें हम गाना करेंगे, बजाना करेंगे, आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, जो सुख दुख है वो सुनाएंगे, ये हमारा मेन पर्पस है इसका। और भी हम क्या करते हैं कि जितने इंडियन रिलेटेड फेस्टिवल्स और सेरेमनीज हैं उसके लिए हम एक्सक्लूसिव इवेंट्स करते हैं। तो वो जो बताया ना कि एक एक हर महीने जो करते हैं इन हाउस, उसमें वन इज डेडिकेटेड टू से इंडियन इंडिपेंडेंस डे, एक अपना इंडियन रिपब्लिक डे, तो जनवरी का फंक्शन वो हो गया, दिवाली का होता है, अभी नवंबर में हम दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे, एक बैसाखी का होता है जो अप्रैल में सेलिब्रेट करते हैं, एक होली का होता है जो मार्च में सेलिब्रेट करते हैं। और मैं साथ साथ आपको बता दूं कि सरकार इस सब में हमारे साथ शामिल रहती है, तो उनसे हमें ग्रांट भी मिलता है कि भाई जाओ अपने फेस्टिवल्स को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करो और लोगों में प्रचार भी करो इसका, ताकि यहां के लोगों को भी पता चले कि क्या होता है। इसके अलावा देखिए ये सबसे जरूरी चीज है कि सरकार काफी इनिशिएटिव लेती है इस चीज के लिए, जैसे एक प्रोग्राम जो अभी हम करीब 5 साल से चला रहे हैं, ये सरकार का एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फॉर शॉर्ट हम बी कनेक्टेड ग्रुप कहते हैं। तो उनका एक प्रोग्राम चल रहा है, ये बी कनेक्टेड प्रोग्राम है, दिस इज फॉर कंप्यूटर लिटरेसी बढ़ाने के लिए ओल्डर पीपल में, फोन कैसे यूज करना है, एप्पल और सैमसंग या एंड्रॉयड में क्या फर्क है, दोनों किस तरह से हो सकता है, अपने लैपटॉप को कैसे यूज करना है, आईपैड को कैसे यूज करना है, सोशल मीडिया क्या चीज है, ईमेल क्या है, और इन सब में खतरा क्या है और फायदा क्या है, इन सब चीजों का ज्ञान हम लोग कोशिश करते हैं लोगों को बतलाने का. और वी आर ऑलवेज फ्री फॉर एनीवन टू कम एंड कंसल्ट विद अस. इसके अलावा सरकार भी इनिशिएटिव लेती है. जैसे अभी रिसेंटली हम एक प्रोग्राम चला रहे थे, क्या हुआ, फेडरेशन ऑफ एथनिक कम्युनिटीज काउंसिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इनके थ्रू ये हेल्थ के लिए हमारे साथ जुड़ करके ओल्डर पीपल को बताने के लिए कोविड 19 का ज्ञान ये लोग हमें काफी हद तक दे रहे हैं. उन्होंने फैसिलिटेट किया कि हम वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में प्रचार करें, हर तरह का वैक्सीनेशन, नॉट ओनली कोविड 19 बट अदर्स लाइक इन्फ्लुएंजा, मेनिंजोकोकलस, शिंगल्स. शिंगल्स के लिए भी वैक्सीनेशन होते हैं. तो इन सब चीज के लिए, अच्छा, लोगों को पता भी नहीं है कई बार कि ये सारी चीजें यहां फ्री में उपलब्ध है. तो आफ्टर द एज ऑफ 65, तो इन सब चीजों के बारे में भी बताया लोगों को, ले गए जाकर के वैक्सीनेशन दिलवाया हमने. वी टीड अप विथ ये टेरी वाइट. तो इस तरह के प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं. तो आपको काफी आइडिया हो गया होगा.
जी बिल्कुल. जी. प्रेम जी, आखिरी सवाल यही पूछना चाहूंगी कि आप इस संस्था का एक अहम हिस्सा हैं और इतने वक्त से जुड़े भी हुए हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा है जब आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं और कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं?
देखिए, इसका तो एक बहुत संक्षिप्त जवाब है.
जी,
मुझे बहुत मजा आता है.
जी.
और वैसे भी मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे दूसरों से मिलकर के बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, उनकी बातें सुनने में मजा आता है. कई बार ऐसे ही मैं फोन पर कईयों से बात करता हूँ, मतलब काफी सीनियर लोग हैं हमारे संस्था में. आज ही सवेरे एक भाई साहब से बात कर रहा था, ही इज गोइंग टू बी 89 दिस ईयर. और उनको भी मजा आता है हमसे बात करके. देखिए, एक चीज आपको सीक्रेट बताता हूँ. जब भी हम लोग दो बूढ़े बूढ़े आपस में बात करते हैं, तो हम लोग अपनी उम्र को भूल करके 16 साल और 20 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं. और एक चीज आपको और बता दूं, क्योंकि बच्चों की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं है. वो तो अपने आप सब बहुत अच्छी तरह से अपने आप को देखभाल कर रहे हैं. तो हमारा फोकस पहुंच जाता है ग्रैंड चिल्ड्रेन पर, और इसी तरह से ये हम लोगों का कॉमन टॉपिक भी एक हो जाता है. और दूसरी बात तो एक तो आपको भी पता होगा, जब दो बूढ़े बैठ करके बात करना शुरू करेंगे, तो यार मुझे यहाँ दर्द हो रहा था, मेरा हॉस्पिटल में ये हुआ, वो डॉक्टर क्या कह रहा है, कौन सी दवा ले रहे, ये हमारा फोकस बन जाता है. लेकिन इस सब चीज से निकल करके हमें दूसरी बातें करनी पड़ती है. ये तो सबके साथ है. और आप शुक्र मनाइए, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जितनी दूर रहें आप इन सब चीजों से, जितने दिन तक, उसके लिए आप ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया करें, क्योंकि कभी ना कभी तो सबको पहुंचना ही है वहां.
बिल्कुल. तो प्रेम जी, आज आपका SBS हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी जानकारी आज आपने हमसे साझा की है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
आपको भी धन्यवाद, और आपने ये मौका दिया हमें शेयर करने का, हमारी संस्था के लिए ये बहुत अच्छी बात है. उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और हम सब साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.
हमसे जुड़िए जब आप चाहें. SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल, या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई पर. आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड, या फिर हमारी वेबसाइट पर भी.